ハレクシナ。आज यहाँ कृष्ण कथा सुनने के लिए और बोलने के लिए बड़ा रम्य वातावरण बना हुआ है। बाहर वर्षा है, ऐसे लग रहा है खुले हवा में बैठकर हम कृष्ण कथा का आनंद ले रहे हैं। काश इतना ही होता कि शायद कोई और योग्य वक्ता होते तो और अच्छी बात हो जाती, लेकिन खैर। वैसे हम भगवान के नियम से, भगवान की योजना से इतने दूर आ चुके हैं कि जब भी प्रकृति का संग थोड़ा बहुत मिल जाता है तो हमें लगता है कि कितनी अच्छी बात है। जो बात वास्तव में साधारण हुआ करती थी पहले काल में, आज हमारे लिए बहुत दुर्लभ हो चुकी है। इसलिए आजकल साफ हवा पाना भी कठिन बात हो गया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि हमारे लिए इसलिए बनाई है कि हम ये सीख लें कि हमारे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है। हमारे अस्तित्व का उद्देश्य केवल एकमात्र है कि हम कृष्ण की सेवा में तल्लीन रहें, उनके भक्त बनकर कृष्ण प्रेम के रस का आस्वादन करें और इस देह को त्यागने के पश्चात उनके शाश्वत धाम में, अप्राकृत जगत में हम लौट कर चले जाएं। और भगवान इतने दयालु हैं कि अनेक तरीकों से हमें वहां निमंत्रण देने के लिए, यहाँ तक कहना चाहिए कि हमें वहाँ खींचे ले जाने के लिए यहाँ पर आते हैं भौतिक संसार में। समय समय पर वो अवतार लेते हैं, नाना प्रकार के अवतार। समय समय पर वो अपने भक्तों को विशेष तरह से शक्ति प्रदान करते हैं उनका कार्य संपन्न करने के लिए, और वो शास्त्रों के रूप में तो हमारे सामने आते ही हैं हमें मार्गदर्शन करने के लिए। अपने नाम में वो अवतार लेते हैं उनके शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने के लिए, और साथ साथ भगवान श्री कृष्ण अपने अर्चा विग्रह के रूप में भी आते हैं। तो ये सारे जो रूप हैं भगवान के, ये केवल हमें उनके धाम में आकृष्ट करने के लिए हैं और इनका कोई अन्य कारण नहीं है। भगवान के धाम में उनके अनन्य भक्त असंख्य हैं और वहां पे अनगिनत लोक है, वैकुंठ लोक, जहां पर उनके ये भक्त उनकी सेवा करते हैं और कृष्ण प्रेम का रस का आस्वादन करते हैं। तो कृष्ण भगवान चाहते हैं कि हम भी इस भौतिक संसार के विकृत रस को त्याग कर उनके पास फिर से लौट कर चले जाएं और सच्चे आनंद की अनुभूति करें। इसलिए भगवान आते हैं यह संसार में। तो भगवान श्री राधा गिरिधारी जी के रूप में यहाँ मीरा रोड में अवतीर्ण हुए हैं, केवल हम सबके उद्धार के लिए। उनके चरण कमलों के प्रति हमारे हृदय में आकर्षण जागृत करने के लिए वो इस रूप में आए हैं। तो भगवान का जो अर्चा विग्रह का रूप है, ये कोई साधारण रूप नहीं है, ये कोई भौतिक रूप नहीं है। भगवान का अर्चा विग्रह का जो अवतार है वो बहुत विशेष होता है, क्योंकि इस रूप को हम साक्षात हमारी इन भौतिक नेत्रों से भी देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करना ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो जिन भक्तों के, संतों के नेत्रों में कृष्ण प्रेम का अंजन लगाया हुआ है, केवल वही भक्त मात्र भगवान श्री कृष्ण को साक्षात देख सकते हैं, उनके सच्चिदानंद स्वरूप को देख सकते हैं। लेकिन अन्य जो भक्त हैं या संसारी लोग हैं, वो भगवान को इस तरह से देख नहीं सकते हैं। तो भगवान बड़े दयालु हैं, सोचते हैं कि ये भक्त मुझे देखने के लिए योग्य नहीं है, अभी तक तैयार नहीं है, उनका हृदय अभी तक पूरी तरह से स्वच्छ नहीं हुआ है। तो जब वो मुझे देखने के लिए योग्य नहीं है तो मुझे जाकर उनको दर्शन देना पड़ेगा। आखिर मेरा नाम भक्त वत्सल है और भक्तों का हित मैं चाहने वाला हूँ। जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, तो मुझे जगत का हितैषी कहा गया है, तो सबका हित मुझे करना है। तो चलो मैं जाके संसार में अर्चा विग्रह का रूप धारण कर लेता हूँ। और इस रूप में आकर भगवान एक जगह स्थित हो जाते हैं। दूसरा कारण भगवान का अर्चा विग्रह का अवतार लेने का ये है कि भगवान बारंबार हमें यही बता रहे हैं कि हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मुझे पत्र फल फूल जल आदि अर्पण करने का इच्छुक है, अगर वो मुझे प्रेम से अर्पण करता है तो मैं उसे बहुत ही प्रेम से स्वीकार भी करता हूँ, क्योंकि भगवान उनके भक्तों से प्रेम चाहते हैं। किसी भी भेंट में जब भगवान देखते हैं कि यहाँ प्रेम है तो भगवान बहुत आसानी से आतुरता से उस भेंट को स्वीकार करते हैं। तो अगर भगवान हमारे सामने साक्षात उपस्थित न होते तो हम किन को, किस रूप को हम ये पत्र फूल फल इत्यादि अर्पण करते? हमारे सामने कोई हो तब हम उनकी सेवा कर सकते हैं। अगर हमारे सामने मौजूद न हो तो कैसे उनकी सेवा कर पाएंगे? संभव नहीं है। तो इसलिए भगवान सोचते हैं कि ठीक है, अभी ये लोग संसार की सेवा में मग्न हैं, अभी मेरी सेवा कैसी करनी है वो नहीं जानते। अगर मैंने अर्चा विग्रह का रूप धारण कर लिया तो फिर वो मेरी सेवा कर पाएंगे। नाना प्रकार की चीजें फल फूल इत्यादि आके मुझे अर्पण कर सकेंगे, मेरा दर्शन कर सकेंगे। इस तरह से भगवान बड़े कृपालु हैं और उन्होंने आकर यहाँ संसार में हमारे उद्धार के लिए अर्चा विग्रह का रूप धारण किया हुआ है। अब ये अर्चा विग्रह का रूप कोई साधारण रूप नहीं है, हालांकि भौतिक पदार्थों से बना हुआ है, जड़ पदार्थों से बना हुआ है, लेकिन फिर भी ये दिव्य कहलाता है, क्योंकि भगवान इसमें प्रवेश कर चुके हैं और इसलिए ये मूर्ति भगवान से अभिन्न मानी जाती है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए जब हम राधा गिरधारी जी का दर्शन कर रहे हैं या जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई प्रतिमा है, स्टैच्यू। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पत्थर के हैं, ये लकड़ी के हैं। हालांकि हैं, लेकिन ये पत्थर और ये लकड़ी भी अभी भगवान के स्पर्श से दिव्य हो चुके हैं, इसलिए ये पत्थर अभी पत्थर नहीं रहा और ये लकड़ी अभी लकड़ी नहीं रही, ये साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण हुए। ये है अर्चा विग्रह, ये है भगवान की श्री मूर्ति। अगर कोई साधारण पत्थर या लकड़ी होता तो अनादि काल से क्या महान भक्त महापुरुष इनकी सेवा करते? लकड़ी पत्थर तो कितने पड़े हैं सड़क पर, लेकिन महान भक्तों ने जाके हर लकड़ी हर पत्थर की उपासना कभी नहीं की। मंदिर में स्थित जो भगवान का रूप है उसकी आराधना उपासना अवश्य भगवान के भक्तों ने की है। कई बार लोग कहते हैं, तर्क करते हैं कि भगवान तो सब जगह है तो मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन बात यह है कि भगवान अगर सब जगह हैं तो मंदिर में भी हैं, अपने अर्चा विग्रह में भी हैं। ऐसा तो नहीं है कि भगवान सब जगह हैं, केवल अपने अर्चा विग्रह में नहीं है, ऐसा हो सकता है? नहीं, भगवान तो सब जगह है ही, लेकिन फिर भी विशेष रूप से वो साक्षात इस पत्थर में उपस्थित होकर उसे सजीव किया है उसने, उन्होंने, और उसे सच्चिदानंद बनाया हुआ है। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उस क्षण से हमें समझना चाहिए कि ये पत्थर या ये लकड़ी अभी साक्षात सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण हो गए। इस तरह से हमें भगवान के मूर्ति की अवहेलना कभी भी नहीं करनी चाहिए, हृदय में संशय भावना से नहीं देखना चाहिए, जानना चाहिए कि ये साक्षात हरि हैं, साक्षात श्री कृष्ण हैं। भगवान के अर्चा विग्रह कई पदार्थों से बने जा सकते हैं, लेकिन ये सब साक्षात परब्रह्म हैं। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से अगर हमें कोई चिट्ठी लिखनी है तो हम उस चिट्ठी के ऊपर जिस व्यक्ति को हम चिट्ठी लिखना चाहते हैं उसका पता लिख देते हैं, चिट्ठी को अच्छी तरह से बंद करके हम एक पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं, अधिकृत पोस्ट बॉक्स में। ऐसा नहीं कि हम कौन से भी सड़क पर पड़े हुए डब्बे में डाल के उस चिट्ठी को हम डालें, नहीं, अधिकृत पोस्ट बॉक्स में, अधिकृत डब्बे में उसका वर्णन होता है कि इसे लाल रंग का होना चाहिए, अमुक स्थान पर स्थित होगा, इसके ऊपर ऐसे ऐसे लिखा होगा। तो ऐसे बक्से में अगर हम हमारी चिट्ठी को डालेंगे तो अवश्य रूप से वो चिट्ठी ठीक स्थान पर पहुंच जाएगी। ठीक उसी तरह से प्रभुपाद जी समझाया करते हैं कि अगर हम भगवान के अधिकृत मूर्ति अर्चा विग्रह की सेवा करें, उनके चरण कमलों में वंदना प्रार्थना करें, तो हमारी प्रार्थना ठीक स्थान पर भगवान के चरण कमलों में पहुंच जाएगी। लेकिन हमने किसी भी प्रतिमा जो सड़क पर है या किसी भी हमने मनगढ़ंत ढंग से कोई प्रतिमा बनाई और उसकी उपासना अगर हमने की तो फिर हमारी प्रार्थना ठीक जगह नहीं पहुंच पाएगी। तो इस तरह से भगवान की प्रतिमा, ये भगवान का अधिकृत रूप है, ऑथराइज्ड फॉर्म। ये संसार में श्रीमद् भागवत में उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, शैली दरुमयी लोही लेप्या लेख्या चशई कति मनुमयी मणिमयी प्रतिमा आष्टा विध स्मृता। वो कहते हैं कि हे उद्धव, मेरे जो प्रतिमा अर्चा विग्रह है, प्रतिमा अष्ट विधा स्मृता, आठ पदार्थों से ये बन सकती है, ये बड़े सुनने लायक बात है। तो कौन से हैं वो आठ पदार्थ जिनसे भगवान की मूर्ति बन सकती है? पहली बात है शैली। शैली मतलब शिला, पत्थर से। पत्थर से भगवान की श्री मूर्ति बनाई जा सकती है, जैसे राधा गिरधारी जी की मूर्ति पत्थर से बनी हुई है। तो पत्थर से बनी हुई मूर्तियां भी सुंदर होती हैं, कई बार काले, कई बार सफेद, कई बार कृष्ण भगवान काले होते हैं मूर्ति रूप में, कभी सफेद होते हैं। आप में से कोई ये बता सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पत्थर में जो बनी हुई होती है वो कभी कभी काले क्यों होते हैं और कभी कभी सफेद क्यों होते हैं? इसके पीछे क्या कारण है, कोई बता सकते हैं? कारण वैसे बहुत सरल है, जब पत्थर काला होता है तो भगवान श्री कृष्ण काले होते हैं, जब पत्थर सफेद होता है तो भगवान श्री कृष्ण सफेद होते हैं, बस। और कोई गहराई में कोई राज नहीं है, कोई रहस्य नहीं है। लेकिन मूर्ति बनाने के पहले, हाँ अवश्य हम चिंतन कर सकते हैं, हमें काले कृष्ण चाहिए या फिर हमें गोरे कृष्ण चाहिए। तो खैर, भक्तों की भावना अलग अलग होती है। जब अफ्रीका में प्रभुपाद जी गए थे तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं अफ्रीका में तो काले कृष्ण होने चाहिए। तो इस तरह से भक्त लोग अपने अपनी भावना के अनुसार मूर्ति चुनते हैं, ये सफेद पत्थर का होना है या फिर भगवान श्री कृष्ण काले पत्थर के होने चाहिए। लेकिन चाहे काले पत्थर के हों या सफेद पत्थर के हों, वो कृष्ण तो कृष्ण ही रहते हैं। दूसरी बात दारूमयी, दारूमयी मतलब, दारू मतलब लकड़ी, लकड़ी से बने हुए हो सकते हैं भगवान की प्रतिमा मूर्ति, जैसे जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया यहाँ पर मंदिर में विराजमान है लकड़ी के रूप में। तो ऐसे भी कितने सारे महत्वपूर्ण भगवान के अर्चा विग्रह हुए हैं लकड़ी से बने हुए। तीसरी बात लोही, लोही मतलब लोहे के, धातु के, अलग अलग विग्रह बने हैं धातु के। लेप्य, लेप्य मतलब जिस वस्तु से लेप लगाया जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए मिट्टी या फिर चंदन, जिस वस्तु को घिस के या यूं ही पानी में मिलाकर लेप लगाया जा सकता है उससे भी हम मूर्ति बना सकते हैं। मिट्टी की मूर्तियां भी बनती हैं, गोबर की मूर्तियां भी बनती हैं। आप में से जो ब्रज में गए हुए हैं वृंदावन में, आपने देखा होगा कि गोवर्धन पूजा के समय, दिवाली के समय, ब्रज के सारे जो लोग होते हैं वो गोबर का पर्वत बनाते हैं अपने घर के सामने। हर एक घर के आंगन में आप देखेंगे कि गोबर का पर्वत बनाया जाता है गोवर्धन का स्वरूप, और फिर उसके हाथ, उसके पैर, उसके आंख, चरण इत्यादि बनाए जाते हैं। तो बहुत सुंदर ढंग से श्रृंगार करते हैं, सजाते हैं ब्रजवासी गण, और इस तरह से आनंद लेते हैं। तो इस तरह से जिस वस्तु का लेप लगाया जा सकता है उस वस्तु के लिए हम प्रतिमा या अर्चा विग्रह बना सकते हैं। लेख्या, लेख्या मतलब चित्र बना सकते हैं, तस्वीर बना सकते हैं, पेंटिंग, इस तरह से चित्र से भी भगवान का अर्चा विग्रह बन सकता है। सैकती, सैकती मतलब बालू से, रेती से। हालांकि ऐसे जो विग्रह होते हैं बहुत कम समय के लिए होते हैं, और फिर क्योंकि ये बहुत कम समय तक रहते हैं तो मंत्र का उच्चारण करके भक्त भगवान को निमंत्रण देते हैं कि इस मूर्ति में प्रवेश हो जाएं, और जब उनको वहां से जाना होता है तो भगवान से कहते हैं कि कृपा करके अब यहाँ से आप प्रस्थान करें, आप अपने धाम में चले जाएं। तो फिर वो मूर्ति फिर जो है बाकी के बालू में मिल जाती है। और एक अद्भुत प्रकार की मूर्ति है मनोमयी, मनोमयी मतलब मन से बनी हुई। कितनी अद्भुत बात है, हम भगवान के अर्च विग्रह को मन से ही बना सकते हैं, अर्थात हमारे मन में जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान के सुंदर रूप का, उनकी लीलाओं का स्मरण करते हैं, तो हमें जानना चाहिए कि ये ही भगवान की मनोमयी अर्चा विग्रह है। क्योंकि भगवान के रूप में, नाम में, स्मरण में, श्रवण में कोई अंतर नहीं है, इसलिए जब हम भगवान का स्मरण भी करते हैं तो भगवान साक्षात हमारे मन में विराजमान हो जाते हैं। और आखिर में श्री कृष्ण उद्धव को बताते हैं केवल मनोमयी ही नहीं, मणिमयी, मणियों से भी हम भगवान के अर्चा विग्रह को बना सकते हैं। मणियों से, ज्वेल्स, अच्छे अच्छे मणियों से बना सकते हैं। हाँ, आजकल हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है, वो ऐश्वर्य नहीं है कि हम केवल मणियों से बना पाएं। और अगर बनाने जाएं भी तो इधर उधर के लोग बहुत निंदा करेंगे कि गरीबों को खिलाने के बजाय आप इतना खर्च भगवान के लिए, मूर्ति के लिए क्यों कर रहे हैं। आजकल के लोगों की भावना भी ऐसे हुई है, अपने घर को भले बाथरूम को भी मार्बल से सजाएं, अपने किचन को ग्रेनाइट से सजाएं, लेकिन अगर भगवान के अर्चा विग्रह को बनाना चाहें मणियों से तो उनको फिर बहुत खेद होता है, दुख होता है, अफसोस होता है। तो इस तरह से श्री कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं कि इन 8 तरह से पदार्थों से हम भगवान के अर्चा विग्रह को बना सकते हैं। लेकिन बनाएं तो कैसे बनाएं, मन घड़े ढंग से तो नहीं बना सकते भगवान के अर्चा विग्रह। जैसे शास्त्र में वर्णन है भगवान के श्री विग्रह का, जैसे संत महात्माओं ने परंपरा में आते हुए इनका वर्णन किया है, जैसे उन्होंने खुद अपने हृदय में साक्षात्कार किया है और उसके पश्चात इसका वर्णन किया है, उनके मार्गदर्शन के अनुसार ऐसे विग्रह बनाए जाते हैं। एक बार प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी, बहुत साल पहले की बात है, जब प्रभुपाद जी पहले शुरुआत में अमेरिका गए थे, तो उन्होंने अपने शिष्या को कहा, जो कि एक कलाकार थी, बहुत अच्छी तस्वीर बनाया करती थी, तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि अभी तुम गोवर्धनधारी कृष्ण का एक चित्र बनाओ। तो उस समय उस शिष्या ने चित्र बनाना प्रारंभ किया। कृष्ण के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी उस समय, तो उन्होंने अपनी ही बुद्धि चलाई और सोचा कि अगर कृष्ण ने कोई पर्वत धारण किया होगा अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली के ऊपर, तो अवश्य बहुत शक्तिशाली होंगे, और जो व्यक्ति ये संसार में शक्तिशाली रहता है उसकी भुजाएं बहुत मजबूत होती हैं। तो फिर उन्होंने कृष्ण का तस्वीर जो बनाया, वो बड़ा हट्टा खट्टा कृष्ण बनाया उन्होंने, और कृष्ण के हाथों में बड़े लंबे चौड़े मसल थे जैसे मिस्टर यूनिवर्स को होता है। और प्रभुपाद जी ने जब ये देखा तो हंसने लगे और कहने लगे कि कृष्ण ऐसे मिस्टर यूनिवर्स की तरह नहीं है, कृष्ण तो बड़े कोमल हैं, नाजुक हैं, एक नव किशोर रूप में हमेशा रहते हैं, नित्य नव किशोर है वो, और इतना कोमल है उनका शरीर कि जब श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए वन में जाते हैं तो सारे गोपियां शोक करती रहती हैं, बड़े चिंतित अवस्था में रहते हैं कि अभी कृष्ण वन में चले गए, हाय हाय अभी क्या होगा, जो वन के अंदर जो कांटे हैं वो चुभेंगे श्री कृष्ण के चरणों के तलवों को, और फिर वहां बड़े पत्थर भी हैं, इनसे भी चोट पहुंच जाएगी भगवान के चरण कमलों को। तो भगवान ऐसे दिखने में तो बड़े नाजुक और कोमल हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर संपूर्ण शक्ति है, शक्ति की कोई कमी नहीं होती है। हमें अगर शक्ति को बढ़ाना है तो खाना पीना पड़ता है, वजन बढ़ाना पड़ता है, व्यायामशाला में जाना पड़ता है, कोई कसरत करनी पड़ती है, वजन उठाना पड़ता है, लेकिन भगवान को शक्तिशाली बनने के लिए कोई ऐसी कसरत करने की आवश्यकता नहीं है। स्वाभाविक तौर से उनके अंदर पूर्ण शक्ति, पूर्ण ज्ञान, सभी कुछ होता है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने उनको समझाया कि देखो कृष्ण के भुजाएं ऐसे होनी चाहिए, उन्होंने खुद बताया, देखो फिर हाथ इतने लंबे होने चाहिए, उंगलियां ऐसे होने चाहिए, उनके कमल नयन ऐसे होने चाहिए, उनके बाल ऐसे होने चाहिए। इस तरह से प्रभुपाद जी ने बहुत विस्तार में अपने शिष्य को समझाया और उसके बाद में शिष्य ने सुंदर तस्वीर बनाई। इस तरह से अधिकृत रूप से परंपरा में आते हुए, शास्त्रों के ऊपर आधारित हुए ज्ञान के आधार पर जब हम अर्चा विग्रह की स्थापना करते हैं तो फिर वही ठीक होता है। लेकिन जो व्यक्ति परंपरा में ज्ञान स्वीकार नहीं करता है तो वो क्या समझेगा भगवान के अर्चा विग्रह को, वो तो अर्चा विग्रह को केवल साधारण पत्थर या लकड़ी ऐसे कुछ समझेगा। अगर हम लाल रंग के ऐनक पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, तो हमें सारे संसार में सभी लोग लाल लाल नजर आएंगे, सब कुछ लाल नजर आएगा हमें। उसी तरह से अगर हमारे आंखों के ऊपर हमने भौतिक दृष्टि लगा ली, तीन गुणों से युक्त हमारी दृष्टि रही, तो हमें ये लगेगा कि सभी कुछ भौतिक है, सभी कुछ तीन गुणों का बना हुआ है, यहाँ तक कि भगवान का श्री विग्रह भी भौतिक है। इसी को मायावाद कहते हैं। मायावादी का मतलब ये नहीं जो व्यक्ति माया में है वो नहीं, जो व्यक्ति समझता है कि भगवान का रूप ये माया का रूप है, तीन गुणों का बनाया हुआ है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का ये रूप है, जो व्यक्ति ऐसे सोचता है ऐसे व्यक्ति को हम मायावादी कहते हैं। तो इस तरह से क्योंकि लोगों की दृष्टि भौतिक होती है, इसलिए वो भगवान के श्री विग्रह को भी भौतिक समझते हैं। तो जो लोग भगवान के अर्चा विग्रह को पत्थर समझते हैं, तो भगवान भी उनकी तरह पत्थर के तरह ही आदान प्रदान करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा होती है, प्रेम होता है और जो समझता है कि भगवान का श्री विग्रह साक्षात भगवान है, केवल पत्थर या लकड़ी नहीं है, तो भगवान ऐसे व्यक्ति के साथ में प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सथैव भजाम्यहम्। जो जैसा बर्ताव करना चाहता है भगवान के संग, भगवान उसी तरह का बर्ताव उसके संग करते हैं। तो अभी हम आपको कई सुंदर सुंदर लीलाएं सुनाने वाले हैं, ताकि जो लोग अभी सो रहे हैं वो जाग जाएं, क्योंकि लीला सुनते समय लोग जागना पसंद करते हैं। लोग आज कहानियां सुनना पसंद करते हैं, दर्शन सुनना इतना पसंद नहीं करते। लेकिन क्या करें, अगर दर्शन नहीं सुनेंगे तो लीलाओं को भी ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो दर्शन और लीला, फिलॉसफी और पास टाइम दोनों होने चाहिए, तभी हमारी समझ, हमारी निष्ठा, श्रद्धा सही सलामत रहेगी। तो खैर, अभी हम थोड़े बहुत ऐसे लीलाएं आपको सुनाने जा रहे हैं, जिससे है ये साबित होगा कि जिन भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति तीव्र श्रद्धा है, वो किस तरह से भगवान के अर्चा विग्रह के संग में प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। कभी भी उनको साधारण पत्थर या कोई भौतिक वस्तु नहीं समझते हैं। हमने आपको बताया कि मनोमयी, कि भगवान के अर्चा विग्रह मन में भी बनाया जा सकता है। दक्षिण भारत में एक बार एक बहुत शुद्ध ब्राह्मण हुआ करते थे, बहुत गरीब थे, जैसे कि ब्राह्मणों को होना चाहिए, और हमेशा वो सोचा करते थे कि मेरे मन में बहुत इच्छा है कि मैं भगवान की अर्चा विग्रह की अच्छी तरह से सेवा करता रहूं, लेकिन मेरे पास धन नहीं है तो क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, भले मेरे पास धन न हो, लेकिन कम से कम मैं मन में तो भगवान की सेवा कर सकता हूँ, कौन मुझे रोक सकता है भगवान की सेवा करने में। देखिए, हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण बात है। कई बार भक्त लोग ये शोक व्यक्त करते हैं कि हमारे घर में परेशानी है, हमें मंदिर आना नहीं छोड़ते हैं, मंदिर में अगर घर में अगर हम जाप करते हैं तो इसका विरोध होता है, या इस तरह से भक्त जो होते हैं वो कई बार कहते हैं कि हमारे भक्ति करने में या भगवान की सेवा करने में बहुत बंधन है। लेकिन हमारे शरीर से सेवा करने में शायद कोई विरोध कर ले, लेकिन मन से सेवा करने के लिए तो कोई आपका विरोध नहीं कर सकता। जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं उनके सामने बैठकर ही आप मन में भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो कोई बंधन नहीं है कृष्ण भावना में, भक्ति मार्ग में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। तो इस तरह से ये ब्राह्मण सोच रहे थे कि ठीक है, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मन में तो मैं धन मैं एकत्रित कर सकता हूँ। तो फिर अपने आश्रम में गए, घर में बैठकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में स्थित हो गए और सोचने लगे कि सुंदर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति उनके पास में है और उनके पास नाना प्रकार के सुंदर सुंदर गहने, मोतियां, मणियां इत्यादि हैं, और अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध हैं, नाना प्रकार के सब्जियां, दूध वगैरह वगैरह। तो फिर वो सब्जी काटने लगे, अपने मन ही मन में सब तैयारी कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए। सब्जी काट रहे हैं तो कहीं दूध सिगड़ी पे उबाल रहे हैं, तो कहीं जाकर बर्तन धो रहे हैं, तो कभी गंगा जी में जाकर शुद्ध जल अपने मटके में वापस ला रहे हैं। तो ऐसे घंटे घंटों घंटों सेवा करते रहे, उनको पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत रहा है। और ऐसे धीरे 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 से कई पदार्थ बन गए और अब खीर बन रहा था। तो खीर जब दूध उबला जा रहा था, अग्नि के ऊपर चावल अंदर था, शक्कर था, तो उस समय उन्होंने देखना चाहा कि दूध अभी पूरी तरह से गर्म हो चुका या नहीं। तो उन्होंने अपनी उंगली अंदर डाली, ये सब अपने ध्यान में चल रहा है याद रखिएगा, और उंगली जब डाली तो तुरंत वो अपने ध्यान से बाहर आए, ध्यान टूट गया। और जब ध्यान टूट गया तो अचानक आश्चर्यचकित होकर उन्होंने अपनी उंगली में देखा और देखा कि उंगली जल गई है। इसका मतलब है कि जो सेवा वो अपने मन में कर रहे थे वो सच्ची सेवा थी, वो कोई कल्पना नहीं थी, क्योंकि भगवान किसी भी रूप में हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। कृष्ण भावना भावना की बात होती है। अगर हमने साक्षात राधा गिरिधारी जी के सामने खड़े होकर उनकी सेवा की, लेकिन हमारा मन हमारे टेलीविजन के सामने है, तो भगवान ये सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन भले हम राधा गिरिधारी जी से बहुत दूर रहें, लेकिन मन ही मन में राधा गिरिधारी जी की सेवा करें, तो ऐसी सेवा से राधा गिरिधारी जी अधिक प्रसन्न होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम राधा गिरिधारी जी से दूर ही रहे, आना भी चाहिए और नजदीक में आकर सेवा भी करनी चाहिए, लेकिन तात्पर्य ये है कि भक्ति या सेवा चेतना की बात होती है। तो ये ब्राह्मण के इस सुंदर कहानी से हम समझ सकते हैं कि मन ही मन में उनकी तीव्र भावना के फल स्वरूप भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पूरी तरह से इनकी सेवा स्वीकार की। तो इस तरह से कई सेवाएं हो सकती हैं जो भक्त भगवान के प्रति अर्पण करते हैं। चैतन्य चरितामृत में बकर दो भक्तों का वर्णन आता है, मुकुंद दास और रघुनंदन। मुकुंद दास वास्तव में एक वैद्य थे और वो राजा की सेवा भी करते थे, राजा की सेवा में उनको तनख्वाह मिलती थी। तो एक बार जब वो राजा की का इलाज कर रहे थे, राजा अपने ऊंचे पलंग पर विश्राम कर रहे थे, तो उस समय राजा के एक सेवक के हाथ में मोर पंख था और उस मोर पंख से ये हवा चला रहे थे राजा के आराम के लिए। मुकुंद दास वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। तो जब उन्होंने मोर पंख देखा तो उस समय तुरंत उनके मन में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण आया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण अपने बालों में ये मोर पंख धारण किए हुए हैं। जैसे ही श्री कृष्ण का स्मरण आया तो वहां से वो भाव विभोर होकर भावग्रस्त हो गए और अपने भाव में ही उस पलंग से नीचे गिर पड़े और बेहोश हो गए, और उनके शरीर के ऊपर अष्ट सात्विक विकार प्रकट हुए, जो शुद्ध भक्ति के लक्षण होते हैं वो प्रकट हो गए। अब राजा बड़े विस्मय में आ गए कि ये क्या हो गया। सारे नौकर चाकर दौड़ के आए और उस समय राजा को पता चला कि ये कोई साधारण बात नहीं है। जब मुकुंद दास होश में आ गए तो राजा ने पूछा कि अरे मुकुंद दास, तुम्हें हो क्या गया है। तो उस समय मुकुंद दास ये बतलाना नहीं चाहते थे कि मेरे अंदर भगवान का जो है भक्ति भाव प्रकट हुआ। वो ये नहीं कहना चाहते थे कि ये अष्ट सात्विक विकार हुए, नहीं। जो सच्चे भक्त होते हैं अपने अंदर जो भी भावनाएं होती हैं उनको बाहर दूसरे लोगों के सामने व्यक्त नहीं करते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं, खास करके आजकल वृंदावन में ऐसे लोग रहते हैं जिनको सहजीय कहते हैं, जो उस शुद्ध भक्ति के स्तर पर न होते हुए भी एक झूठे झूठे भावना को व्यक्त करते हैं, मानो कि बहुत ऊंचे भक्त हैं, लेकिन केवल दूसरे लोगों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए। तो हमारी परंपरा में इस बात की निंदा की गई है कि सच्चा भक्त वो होता है जो केवल झूठे प्रशंसा के लिए अपने भाव को बाहर व्यक्त करता है। तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, जैसे मुकुंद दास ने अपने उदाहरण से सिखलाया। तो मुकुंद दास ने कहा, अजी मुझे कुछ नहीं हुआ, वास्तव में बात यह है कि मुझे ये बीमारी है, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी को क्या कहते हैं हिंदी में? मृगी। ये बीमारी है मुझे। तो क्या हुआ कि मुझे अचानक इसका दौरा पड़ गया और मैं नीचे गिर पड़ा। तो राजा बड़े बुद्धिमान थे, वो समझ गए कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए उनको ये भाव भोर हो गए, ये मोर पंख को देखकर कृष्ण का स्मरण हुआ इसलिए नीचे गिर पड़े। तो ये मुकुंद दास इतने शुद्ध भक्त थे। तो उनका एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था रघुनंदन। तो एक बार जब ये मुकुंद दास जी अपने घर में अर्चा विग्रह को भोग चढ़ाने जा ही रहे थे कि अचानक कोई व्यक्ति गांव के आए, कहने लगे कि कोई व्यक्ति बहुत गंभीर, आपको वहां आना इसी क्षण अनिवार्य है। तो उस समय मुकुंद दास बड़े दुविधा में पड़ गए कि यहाँ भी हमें अभी जाना है सेवा के लिए और इधर भगवान की सेवा भी करनी है, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने अपने छोटे पुत्र रघुनंदन से कहा कि अरे रघुनंदन, देखो मुझे अभी बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है और तुम यहाँ कृष्ण भगवान को भोग चढ़ाओ, तुम कृष्ण को खिलाओ, जरूर खिलाना, भूलना नहीं, भगवान को भूखा मत रखना, मैं अभी थोड़ी देर में आया। तो मुकुंद दास वैसे चले गए और इधर रघुनंदन सोच रहे थे कि पिताजी ने मुझे बताया है कि कृष्ण को हमें खिलाना है। तो भोग की थाली ले ली और भगवान के अर्चा विग्रह के सामने रखा और बड़े मासूम थे, छोटे बच्चे हैं, उनकी श्रद्धा होती है, हम बड़ों जैसे नहीं जो हमेशा संशय करते हैं हर बात के ऊपर। तो उन्होंने कहा, कृष्ण मेरे पिताजी ने कहा है कि मुझे तुम्हें खिलाना है, तो खाओ अभी। तो जब प्लेट उनके सामने रहा और कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, कृष्ण ने हाथ उठाकर कुछ खाया नहीं, तो बच्चा सोचने लगा कि अरे ये क्या हो रहा है, कृष्ण खा नहीं रहे हैं। रघुनंदन सोच रहा था कि भगवान भी ऐसे ही खाते हैं जैसे हम खाते हैं। हमारे सामने जब थाली रखी जाती है तो बहुत जल्दी ही थाली खत्म हो जाती है, खास करके जब स्वादिष्ट से स्वादिष्ट रसगुल्ले इत्यादि रखे हुए होते हैं तो जल्दी जल्दी से थाली खत्म हो जाती है, थाली में कुछ रह नहीं जाता। लेकिन भगवान के खाने का तरीका अलग होता है। अंगान यस्य सकल इंद्रिय वृत्तिमन्ति, भगवान अपने किसी भी अंग से किसी भी दूसरे अंग का कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, अपने आँखों से वो सुन सकते हैं, अपने कानों से वो देख सकते हैं, अपने आँखों से वो खा सकते हैं। इसलिए जब हम भगवान के सामने भोग की थाली रखते हैं तो केवल अपने दर्शन मात्र से, अपनी दृष्टि मात्र से ही वो उस भोग को स्वीकार कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, जब वो स्वीकार कर लेते हैं और फिर से थाली भर देते हैं, और जब थाली फिर से भर जाती है तो वो भगवान का प्रसाद हो जाता है और भक्त लोग बड़े खुशी से, उल्लास से उस प्रसाद का ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह से ये सिद्धांत जो है रघुनंदन नहीं जानता था, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा था। उसने अपने मासूम दिल से सोचा कि शायद भगवान श्री कृष्ण भी हमारी तरह ही भोजन खाते हैं। तो जब भगवान ने नहीं खाया तो 2-3 बार रघुनंदन ने कहा कि क्यों नहीं खा रहे हो। तो फिर जब डांटने के बाद भी कृष्ण नहीं खाया भोजन, तो बैठकर रोने लगे कि तुम्हें खाइए, मैं यहां से जाऊंगा नहीं। और आखिर में जब बैठे तो फिर भगवान ने सोचा कि ये बच्चा अभी इतना रोएगा, आगे जाके इतना दिल दुखी हो जाए, इसका दिल दुखी हो जाएगा। तो भगवान ने सारी थाली खा ली, थाली समाप्त हो गई। उधर बेचारे मुकुंद दास फिर से आ गए परिश्रम के बाद में, भूखे थे, और आके घर में पूछा, अरे मुकुंद महाप्रसाद लाओ तो सही, कृष्ण को खिलाया तो सही ना। हाँ पिताजी, कृष्ण को बहुत अच्छी तरह से खिलाया, कृष्ण बहुत अच्छी तरह से खा गए, तो ठीक है लाओ महाप्रसाद। नहीं, भगवान तो खा गए। हाँ हाँ, तो महाप्रसाद तो लाओ। तो नहीं नहीं, थाली खत्म कर दी उन्होंने। अरे थाली खत्म कर दी, क्या मतलब? तो रघुनंदन ने बताया, हाँ कृष्ण भगवान ने सारी थाली, सारा भोजन लेकर अपने मुंह में डाल दिया और खा लिया। तो उस समय मुकुंद दास सोचने लगे कि ये बच्चे ने शायद सारा कुछ खा लिया अपने आप में, और अभी कह रहा है कि कृष्ण ने खा लिया। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत संदेह था, संशय था हृदय में कि कहीं ये बच्चा कुछ सही तो नहीं बोल रहा, सच तो नहीं बोल रहा, ठीक है इसकी परीक्षा ली जाए। तो फिर उन्होंने क्या किया, कहा ठीक है, और लड्डू अर्पण करते हैं भगवान को, तो ये भगवान को भोग चढ़ाओ। तो लड्डू एक छोटे से थाली में रखा और रघुनंदन से कहा, अरे रघुनंदन अभी फिर से कृष्ण को खिलाओ। और पर्दे के पीछे से छुप कर वो देख रहे थे कि अब देखते हैं क्या होता है। और वास्तव में जब थाली बाहर आई तो क्या देखा कि भगवान ने आधा लड्डू खा लिया था। तभी उन्होंने उनको पता चला कि वास्तव में ये रघुनंदन ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। बहुत खुशी में उन्होंने रघुनंदन से आलिंगन किया, गले लगाया और कहने लगे कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि तुम जैसा पुत्र मुझे मिला है। और एक बार चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद दास से पूछा कि अरे मुकुंद, मैंने सुना है कि रघुनंदन तुम्हारा पुत्र है, लेकिन सच सच बताओ पुत्र कौन है और पिता कौन है? क्या तुम रघुनंदन के पिता हो या रघुनंदन तुम्हारा पिता है? तो उस समय मुकुंद दास ने कहा, हाँ आपने जो बात कही वो सही कही, वास्तव में रघुनंदन मेरा पिता है और मैं इसका लड़का हूँ, क्योंकि मैंने इससे सीखा है कि कृष्ण भक्ति क्या चीज होती है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने रघुनंदन और मुकुंद दोनों का गुणगान किया। इस तरह से चैतन्य लीला में हम देखते हैं कई भक्त हुए जिन्होंने ऐसे अर्चा विग्रह के संग सुंदर सुंदर लीलाएं की। तो जिनके भक्तों की श्रद्धा होती है जैसे रघुनंदन की थी, तो भगवान ने बिल्कुल एक व्यक्ति की तरह ही उनके साथ में आदान प्रदान किया। लेकिन जिस व्यक्ति को श्रद्धा नहीं होती, सोचते ये पत्थर है तो भगवान यूं ही पत्थर की तरह खड़े रहेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के पहले वो एक गांव में गए थे जिसका नाम था अंबिका कालना। उस गांव में उनके एक बहुत शुद्ध भक्त रहते थे जिनका नाम था गौरीदास पंडित। और गौरीदास पंडित को पता चला, उनको संदेह हुआ कि बहुत दिन थोड़े दिनों के बाद में ही शायद अभी निमाय पंडित संन्यास लेने वाले हैं, हम सबको छोड़कर वो चले जाने वाले हैं। तो बहुत शोक ग्रस्त अवस्था में थे, सोच रहे थे कि किसी न किसी तरह से ज्यादा संग प्राप्त कर लेना चाहिए। तो उन्होंने निमाय पंडित से, चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया कि कृपा करके आप मेरे गांव में, मेरे घर में और थोड़े दिन ठहर जाइए और मुझे थोड़ा संग दीजिए। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो गौरीदास, मुझे अब जाना है, लेकिन फिर भी तुम मेरे इतने प्रेमी भक्त हो, इसलिए मैं मेरे खुद की विग्रह बनाकर तुम्हें दे देता हूँ। मुझ में और मेरे विग्रह में कोई अंतर नहीं है, और तुम मेरे विग्रह की सेवा करोगे तो मेरी सेवा करने के बराबर है, कोई अंतर नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने खुद अपने कर कमलों से, नीम वृक्ष से, उसकी लकड़ी से खुद उनका विग्रह बनाया और नित्यानंद प्रभु का विग्रह बनाया। और ये गौर निताय की मूर्ति अर्चा विग्रह जो नीम की बनी हुई थी, इन दो विग्रहों का भेंट किया गौरीदास पंडित से। तो गौरीदास पंडित ने कहा कि ये तो विग्रह है, आप नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जवाब दिया, अरे गौरीदास, तुम तो वैष्णव हो, तुम शास्त्रों में निपुण हो, तुम्हें वैष्णव सिद्धांत मालूम है कि अर्चा विग्रह में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो मैंने जब अर्चा विग्रह तुम्हें दिए हैं तो तुम अर्चा विग्रह की सेवा करो, कोई अंतर नहीं है। तो देखिए, भगवान के भक्त जो होते हैं वो भगवान से भी ज्यादा चतुर होते हैं, ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। शेर भगवान तो ये सवा से। तो गौरीदास पंडित कहने लगे कि अगर आप में और अर्चा विग्रह में कोई अंतर नहीं है तो अर्चा विग्रह को जाने दीजिए और आप रह जाइए, बात एक ही है ना, आप दोनों एक ही हैं। तो विग्रह भी चले जाएंगे तो वो आपका काम कहाँ जहाँ करना है वो कर लेंगे, और आप यहाँ खड़े रहिए हमारे मंदिर में। तो फिर से भगवान हार गए। अब बारंबार भगवान हार जाते हैं। जब वृंदावन के वनों में कुश्ती करते हैं अपने भक्तों के साथ में तो हार जाते हैं, राधा रानी के साथ में वाद करते हैं तो हार जाते हैं। तो हर बात में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के संग हार जाते हैं और हारना पसंद करते हैं। तो खैर, यहाँ भी गौरीदास पंडित ने उनको हरा दिया। तो भगवान ने कहा, ठीक है, बड़े चतुर हो तुम, तुमने हरा दिया तो अब क्या करूं? तो ठीक है, मेरे अर्चा विग्रह को जाने दो। तो फिर गौर निताय जो है वो सजीव होकर चल पड़े और नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु उनके सिंहासन पर जाकर वहां विराजमान हुए, यूं जाके खड़े हो गए और अर्चा विग्रह बन गए। तो इस तरह से गौरीदास पंडित जो है बड़े प्रेम से वो गौर निताय की मूर्ति की सेवा करते रहे। गौर निताय के पास जो गौरीदास पंडित हैं, उनके पास ज्यादा धन नहीं था। आप सब सुन पा रहे हैं, महाप्रभु की सेवा किया करते थे, उनसे बातें करते थे, उनसे शास्त्रों के ऊपर चर्चा करते थे। कई भागवत की टीका उठाकर, श्लोक उठाकर पढ़ते थे कि यहाँ ऐसे बताया है श्रीधर स्वामी ने और ऐसे ऐसे है, तो इसके सच्ची इसका अर्थ क्या होता है, मेरे मन में ऐसा है। फिर गौर निताय कुछ बोलते, नहीं नहीं वास्तव में ये ऐसे है। तो शास्त्रों के ऊपर चर्चा संवाद हमेशा रहता। भगवान का श्रृंगार करते, भोग चढ़ाते। और गौरीदास पंडित वैसे गरीब थे, ब्राह्मण थे आखिर, तो उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे श्रृंगार करने के लिए। लेकिन कई बार गौर निताय अपने आप को बड़े सुंदर सुंदर नए नए मूल्यवान गहनों से सुशोभित कर देते थे। और जब गौरीदास पंडित दर्शन करने आते तो देखते कि अरे आपको कहाँ से सुंदर गहने मिल गए, मेरे पास तो नहीं है। और इस तरह से गौरीदास पंडित हमेशा आश्चर्यचकित रह जाते अपने विग्रह गौर निताय की अद्भुत लीलाओं को देखकर। तो एक बार ऐसे हुआ कि गौरीदास पंडित के एक शिष्य थे जिनका नाम था चैतन्य दास। चैतन्य दास ने एक बार एक बहुत ही बड़ा हरिनाम संकीर्तन का उत्सव की योजना की। और इस उत्सव में जगह जगह से कई वैष्णव आए और वहां पर बहुत धुआंधार कीर्तन चल रहा था। और उस समय गौर निताय जो अपने सिंहासन पर विराजमान थे, वो अपने आप को रोक नहीं पाए, वो भी कूद पड़े छलांग लगाकर, वो भी कीर्तन के मैदान में आ खड़े हो गए। जब गौरीदास पंडित ने देखा कि अरे सिंहासन खाली है, मंदिर खाली, कहाँ गए गौर निताय, लाठी लेकर छड़ी लेकर भागे उनके पीछे, अरे कहाँ गए गौर निताय कहाँ गए। तो जैसे उनको देखा संकीर्तन में नृत्य कर रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे भागने लगे, अरे जाओ अंदर जाओ अंदर, यहाँ क्या कर रहे हो तुम, बाहर आओगे तो सेवा कौन, मैं किसकी सेवा करूंगा। तो इस तरह से जब गौर निताय ने देखा कि उनका भक्त उनका पीछा कर रहा है, तो बड़े घबरा गए, अब भाग निकल पड़े वहां से। लेकिन कहां जाएं, सब जगह गौरीदास पंडित पीछा कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उनके शिष्य चैतन्य दास के हृदय में जाकर प्रवेश हो गए। और ये देखकर गौरीदास पंडित बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए। और उन्होंने जाके चैतन्य दास से आलिंगन किया और कहने लगे, आज मेरा जीवन धन्य है, क्योंकि तुम जैसा शिष्य मुझे मिला है। और आज से तुम्हारा नाम होगा हृदय चैतन्य दास, क्योंकि जिसके हृदय में स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने प्रवेश किया है, इसलिए तुम्हारा नाम है हृदय चैतन्य दास। वास्तव में इसी हृदय चैतन्य दास के शिष्य आगे चलकर वृंदावन गए। इस शिष्य का नाम कोई बता सकते हैं? श्यामानंद पंडित। पहले उनका नाम था, कोई बता सकते हैं? दुखी कृष्णदास। फिर स्वयं राधा रानी ने उनको नाम दिया श्यामानंद। तो वो एक अलग लीला है। खैर, इस तरह से गौर निताय फिर से आकर हृदय चैतन्य दास के हृदय से होकर फिर से अपने सिंहासन पर जाकर विराजमान हुए। यूं अपने आसन में खड़े हो गए। तो उसके बाद में गौरीदास पंडित ने नियम बनाया कि अभी आज से हम मंदिर का पर्दा जो है ज्यादा समय खुला नहीं रखेंगे, क्योंकि ज्यादा समय खुला रखेंगे तो भक्त लोग आएंगे तो ये कूद पड़ेंगे फिर से। आज तक भी अंबिका कालना के जो पुजारी हैं, जब वैष्णव आते हैं तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन फिर भी हृदय उनका धक धक करता है, कहीं ये वैष्णवों के संकीर्तन को सुनकर हमारे गौर निताय कहीं और कूद न जाए, यहाँ से चले न जाए। इसलिए हर दो दो मिनट में पर्दा बंद करते हैं, खोलते हैं, फिर से बंद करते हैं, जिस तरह से वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में करते हैं। तो इस तरह से भगवान श्री हरि श्री कृष्ण, चाहे वो कृष्ण के रूप में हो, चैतन्य महाप्रभु के रूप में हो, वो सब इसी तरह की लीला अपने भक्तों के संग में करते हैं अर्चा विग्रह के रूप में। चैतन्य महाप्रभु के और एक भक्त थे जिनका नाम था राघव पंडित। अब ये राघव पंडित इतने शुद्ध भक्त थे और ये बहुत प्रसिद्ध थे अपनी मूर्ति पूजा के लिए। इतने सुंदर ढंग से अपने विग्रह की सेवा करते थे कि इसकी कोई तुलना नहीं थी। कोई भी संसार में जगत में ऐसी सेवा नहीं कर पाता। वो बड़े अमीर थे, उनके पास कई बगीचे उद्यान थे, कई नारियल के पेड़ थे, सैकड़ों नारियल के पेड़ थे जिनमें अच्छे अच्छे बड़े बड़े नारियल निकलते थे। लेकिन फिर भी अगर राघव पंडित को पता चलता कि कहीं दूर कोई अच्छे नारियल मिल रहे हैं जिनका जल बहुत ही मीठा है, तो राघव पंडित किसी अपने व्यक्ति को भेज देते और कहते कि वहां से उस दूर जगह से जाकर तुम ये नारियल लेकर आना, मैं मेरे कृष्ण को ये मीठा नारियल का पानी पिलाना चाहता हूँ। हालांकि अपने ही घर के आंगन में इतने सारे नारियल थे, लेकिन बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके दूर किसी व्यक्ति को भेजकर नारियल मंगाया करते थे। तो इस तरह से वो भगवान के सामने नारियल को फिर ऊपर का हिस्सा काट कर फिर वो रख देते थे और हमेशा भगवान नारियल पानी को पी जाते थे। जैसे रघुनंदन के साथ में हुआ था, सारी थाली खत्म कर दी थी, उसी तरह से राघव पंडित को प्रेम को देखकर भगवान श्री कृष्ण उस सारे पानी को पी जाते थे, कुछ छोड़ते नहीं थे। फिर बड़े संतुष्ट होकर राघव पंडित उस डाब को काट कर फिर उससे मलाई निकालते थे, मलाई फिर से एक थाली में रखकर भगवान के सामने रखते थे और भगवान उस मलाई को भी खा लेते थे। खाकर वापस नहीं रख देते थे, खाकर खा लेते थे। तो इस तरह से जब राघव पंडित आकर देखते थे कि अभी थाली खाली हो चुकी है, तो और भी बड़े संतुष्ट हो जाते थे। इस तरह से राघव पंडित भी अपने विग्रह श्री कृष्ण के साथ साथ में वो आदान प्रदान प्रेम का किया करते थे। एक बार ऐसे हुआ कि उनके मंदिर के पुजारी एक हाथ में एक नारियल उन्होंने लिया हुआ था और जैसे ही वो भगवान के गर्भगृह में प्रवेश कर रहे थे तो एक हाथ से उन्होंने दरवाजे का ऊपर का जो हिस्सा है उसको स्पर्श किया, छुआ, और उसी हाथ से फिर उन्होंने नारियल पकड़ लिया, डाब को पकड़ा। जब राघव पंडित ने देखा तो उन्होंने कहा कि अरे ये क्या कर दिया तुमने, ये फेंक दो, नारियल फेंक दो। तो पुजारी ने कहा नहीं नहीं शुद्ध है। तो राघव पंडित कहने लगे नहीं नहीं देखो, ये नारियल पहले शुद्ध था लेकिन तुमने बाएं हाथ से इस दीवार के इस दरवाजे के ऊपर जो दीवार है उसका स्पर्श किया। अभी यहाँ इस मंदिर में कितने सारे लोग आते हैं और जब उनके चलने से जो जमीन पर धूल है वो उड़ जाती है और धूल उड़ जाती है तो कभी दीवारों पर अटक जाती है और यहाँ दरवाजे के ऊपर दीवार है, इसके ऊपर भी शायद यहाँ धूल है, तो जब तुमने वो दीवार को स्पर्श किया तो उंगलियों में धूल लग गया और अब वही धूल तुमने नारियल को लगाया, अब यही नारियल तुम भगवान को भोग चढ़ाओगे, ये कैसे हो सकता है। इसी नारियल को वो बहुत पैसे देकर दूर से मंगाए थे लेकिन उस नारियल को हाथ में लिया और बाहर फेंक दिया और दूसरा नारियल लिया। तो देखिए कितनी अद्भुत बात, कितना प्रेम था राघव पंडित का अपने विग्रहों के प्रति। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि हम राघव पंडित की नकल नहीं कर सकते। अगर राघव पंडित ने जो स्टैंडर्ड रखा था अर्चा विग्रह के पूजा के लिए, अगर हम उसका उसकी नकल करने जाए तो हो सकता है भगवान राधा गिरिधर जी भूखे ही रह जाए, क्योंकि आजकल तो संभव है ही नहीं हमारे लिए आजकल के जमाने में। तो खैर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि राघव पंडित कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनको कोई एक तरह का पागलपन था जो हर चीज जरूर से ज्यादा साफ रखना चाहते हैं। एक ये भी एक तरह का पागलपन होता है लोगों में, दिमाग की खराबी होती है। कई बार लोग ऐसे होते हैं जो धूल का एक कण भी अपने इधर उधर पसंद नहीं करते,
दिन में 10 बार कमरा साफ करते हैं, दिन में 10 बार अपने कपड़े साफ करते हैं, दिन में 10 बार स्नान करते हैं, ये एक तरह की बीमारी है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि गलत मत समझिए राघव पंडित को। राघव पंडित कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे, उनका प्रेम इतना शुद्ध था, इतने ऊंचे अवस्था में थे वो भक्ति में कि ऐसे विग्रह के साथ में उनका विशेष आदान प्रदान हुआ करता था। इस तरह से भगवान अर्चा विग्रह के रूप में अपने भक्तों के साथ में लीला करते रहते हैं। जब सनातन गोस्वामी वृंदावन में गए तो राधा वो मदन मोहन जी की सेवा किया करते थे। सनातन गोस्वामी जो तो बाबा जी थे, बाबा जी मतलब जानते हैं, उनके पास कुछ रहता नहीं है और सनातन गोस्वामी के साथ केवल थोड़े ग्रंथ थे। वो दिन भर अपना जाप किया करते थे, ग्रंथों की रचना किया करते थे और मदन मोहन जी की थोड़ी बहुत सेवा किया करते थे। और क्या काम था उनका, नाना शास्त्र विचार नई कनिपुणो सद्धर्म संस्थापको, ये उनका काम हुआ करता था कि नाना तरह के शास्त्रों का अध्ययन करके उनका निचोड़ निकाल कर फिर सारे भक्तों के हित के लिए, जगत के हित के लिए अलग अलग ग्रंथों की रचना करना, ये उनका काम हुआ करता था। तो जो वो भोग चढ़ाया करते थे मदन मोहन जी को, ज्यादा कोई ऐश्वर्यशाली भोग नहीं था, साधारण जो भी दाल रोटी बनाया करते थे वो ही भोग चढ़ाया करते थे। तो एक बार जब वो भोग चढ़ा रहे थे मदन मोहन जी को, तो मदन मोहन जी अर्थात भगवान की श्री विग्रह उनसे कहने लगे कि अरे सनातन, कम से तुम मुझे एक स्वादिष्ट व्यंजन तो नहीं खिलाते, लेकिन कम से कम रोटी में थोड़ा नमक तो डाला करो, मुझे बिना नमक के खिलाते हो, ये क्या सेवा है। तो सनातन गोस्वामी कहने लगे कि देखो जी, मैं तो बाबा जी हूं, मेरे पास यहाँ क्या है, अगर मुझे कुछ आपको कुछ चाहिए तो मुझे देना होगा, आप ही को देना होगा, आप अगर मुझे नहीं देंगे तो मैं भोग कहाँ से चढ़ाऊंगा। आज नमक मांग रहे हो, अभी कल शक्कर मांगोगे और परसों पता नहीं और क्या मांगोगे, मेरे पास जो है उससे आपको संतुष्ट रहना है, आप ही के ग्रंथ तो मैं लिख रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो फिर मदन मोहन जी चुप रहेगा, ठीक है करो सेवा मेरी, हाँ हम भी इसकी नकल नहीं कर सकते, राधा गिरिधारी जी को नहीं कह सकते कि आप केवल बिना नमक के रोटी चपाती खा लो या कोई खीर में कोई शक्कर न हो तो चल जाएगा, नहीं। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो बहुत हृदय से अच्छी तरह से लापरवाही न करते हुए हम सेवा करते हैं। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन जी की सेवा की, मदन मोहन जी बड़े प्रसन्न हुए और वास्तव में उन्होंने सारे उनको आवश्यकताएं दे दी। फिर एक बड़े व्यक्ति आए और वो उनका कोई उनकी कोई समस्या थी, सनातन गोस्वामी की कृपा से समस्या से दूर हो गए, तो उन्होंने बड़ा मंदिर बनाया मदन मोहन जी के लिए। आज भी वो मंदिर है वृंदावन में, आप में से जो वहां गए हैं आपको मालूम होगा। और एक भक्त हुआ करते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय, उनका नाम था वंशीदास बाबा जी। वंशीदास बाबा जी भी भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे, लेकिन अवधूत थे। आप जानते हैं कि अवधूत क्या होते हैं, अवधूत वो होते हैं जो समाज के नियमों का पालन नहीं करते, जब चाहे कहीं भी जाते हैं, कपड़े कभी पहनते हैं नहीं पहनते हैं, कुछ भी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, कहां भी कुछ भी कहते हैं करते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर वो भगवान के भक्ति में हमेशा तल्लीन रहते हैं। बाहर की दुनिया का साक्षात्कार उनको नहीं होता, वो अपने अंदर ही अंदर के भगवान की सेवा की दुनिया में तत्पर रहते हैं। तो वंशीदास बाबा जी एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। कुटिया तो क्या, केवल 4 दीवारें थे, थोड़ी बहुत टूटी फूटी पत्तों से बनाए हुए, को थोड़े बहुत लकड़ियां पत्थर, ऐसे एक छोटी सी कुटिया थी और उसमें ठीक दरवाजा भी नहीं था। और इस कुटिया के अंदर गौर निताय की मूर्ति थी अर्चा विग्रह, और कभी कभी उनकी सेवा किया करते थे। और जब भी वंशीदास बाबा जी उधर उधर जाते थे तो गले में एक थैली लटकाकर उस थैली में अपने प्रिय गौर निताय को ले जाया करते थे। उनके पास में ज्यादा कोई धन तो नहीं था, उस कुटिया के अंदर केवल 2-3 बर्तन थे जिसमें वो कुछ पकाया करते थे गौर निताय को अर्पण करके, कभी कभी कुछ भोग प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करते थे, कभी कभी खाना भूल जाते थे तो खाते नहीं थे, जब याद आता था कभी कभी तो खा लेते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनके कुटिया से ये 2 बर्तन चोरी हो गए। जब चोरी हो गए तो बंशीदास बाबा जी को आया बड़ा गुस्सा और गौर निता के पास छड़ी लेकर आए, ये तो तुम्हारी हरकत है, तुम्हारे अनुमति के बिना कौन यहाँ से चोरी कर सकता है, जरूर तुमने कोई हरकत की होगी तो तुम्हें दंड मिलना चाहिए, तुम भूखे रहो अभी, जब तक तुम ये बर्तन लौटाओगे नहीं तब तक मैं तुम्हें खिलाऊंगा नहीं, तुम्हारी सेवा नहीं करूंगा, मेरे साथ में ऐसे हरकत करते रहोगे तो मैं भी सबक सिखाऊंगा। तो गौर निताय बड़े घबरा गए, तो 1 घंटे में बर्तन वापस आ गए और फिर बंशीदास बाबा जी ने कहा ठीक है अभी अच्छी तरह से भोग चढ़ाऊंगा, आपकी सेवा करूंगा। और इस तरह से बंशीदास बाबा जी गौर निताय की सेवा करते रहे। बंशीदास बाबा जी वास्तव में इतने शुद्ध भक्त थे कि जब भी वो कोई भी शब्द सुनते थे जो कृष्ण या कृष्ण लीला से थोड़ा बहुत संबंधित था तो वो भाव विभोर हो जाते थे। जैसे मुकुंद दास ने मोर पंख को देखकर कृष्ण का स्मरण किया और बेहोश हो पड़े, उसी तरह बंशीदास बाबा जी भी हुआ करते थे। एक बार वो सड़क से पैदल जा रहे थे तो वहां पर किसी व्यक्ति ने अंग्रेजी शब्द गवर्नमेंट का उच्चारण किया तो बंशीदास बाबा जी ने सुना गोवर्धन, तो तुरंत वो नाचने लगे कूदने लगे गोवर्धन 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 और भाव विभोर हो गए। तो ये थे बंशीदास बाबा जी। ऐसे कितने ही और सुंदर सुंदर लीलाएं हैं जिससे कि भगवान की अर्चा विग्रह ने अपने शुद्ध भक्त के साथ में ऐसे लीला की प्रेम का आदान प्रदान किया। लेकिन मूल बात है भगवान ऐसा व्यवहार केवल उन भक्तों के साथ में करते हैं जिनका हृदय निर्मल है, श्रद्धा से युक्त है, जिनके हृदय में प्रेम है भगवान के प्रति, ऐसे भक्तों के साथ ही भगवान ऐसे लीला करते हैं। और जिनकी श्रद्धा बिल्कुल नहीं है या जो संशय आत्मा है उनके लिए भगवान केवल एक जगह में खड़े रहते हैं, पत्थर के रूप में प्रतिमा के रूप में खड़े रहते हैं। लेकिन वास्तव में जिनकी श्रद्धा है जिनकी दृष्टि है वो जानते हैं कि भगवान बड़े एक्टिव हैं, कार्यशील हैं, वो कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं, भगवान एक जगह नहीं रहते। तो इसे हमें श्रद्धा की दृष्टि से देखना चाहिए। तो जब हम राधा गिरिधारी जी की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के दर्शन करने जाएंगे तो हमें समझना चाहिए कि ये कोई साधारण प्रतिमा नहीं है, ये साक्षात भगवान है। साक्षी गोपाल जी की लीला में जो नवयुवक ब्राह्मण थे उन्होंने गोपाल जी से प्रार्थना की प्रतिमा न है तुम्हें साक्षात व्रजेंद्र नंदन, आप प्रतिमा नहीं है आप साक्षात व्रजेंद्र नंदन है। इसलिए जब हम अभी भगवान का दर्शन करने जाएंगे तो हमें यही कहना चाहिए कि आप मूर्त आप साधारण प्रतिमा नहीं है, आप गोलोक वृंदावन से पधारे हैं, वही राधा गिरिधारी जी हैं आप। इस तरह से हमारी भावना रहनी चाहिए, जब भी भगवान के सामने आएंगे सुंदर प्रार्थना अर्पण करने चाहिए, केवल ये नहीं कि हे गिरिधारी जी मेरी बीमारी ठीक कर दीजिए, गिरिधारी जी दफ्तर में मुझे प्रमोशन दे दीजिए, ऐसा नहीं। हे गिरिधारी जी आपके चरण कमलों में आश्रय दीजिए, आपके चरण कमलों के प्रति हमारे हृदय में आकर्षण जागृत कीजिए, आपके शुद्ध नाम के प्रति आकर्षण जागृत कीजिए, इस तरह की प्रार्थना कर सकते हैं और उनका गुणगान कर सकते हैं। ऐसे भावना से फिर हमारे हृदय में राधा गिरिधारी जी स्फूर्ति करेंगे, हमारे हृदय में विराजमान होंगे और फिर कभी हमारे हृदय में यह संशय नहीं होगा कि ये कोई साधारण प्रतिमा है। हम जान पाएंगे कि साक्षात कृष्ण हमारे बीच में हमारा उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। किसी के कोई प्रश्न है? सो व्हाट इज द प्रॉब्लम है
भगवान की अर्च विग्रह के बारे में बहुत सारी लीलाएं सुनी और अर्च विग्रह के पीछे जो रहस्य है जो दर्शन है उनका भी हमने श्रवण किया तो उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। उनको तीन बार बोल हरि बोल बोल के हमारा आभार प्रकट करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और हम आशा करते हैं कि जब भी बॉम्बे में रहे तब हमारा संगति प्रदान करें। और अभी आज कल
देवामृत को धन्यवाद जी, इतना अच्छी भक्त लोग का लीला सुना है। इसके साथ में हम इस राधा कृष्ण मंदिर के भक्त लोग श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी रथ यात्रा में आप लोग का पूर्ण सहयोग के लिए इतना बारिश में आप लोग इतना योगदान दिए, इसलिए हम लोग आपके योगदान में ही रथ यात्रा सफल हुआ है, सक्सेस हुआ है, इसको शब्द में हम वर्णन नहीं कर सकते। तो इसलिए हम भगवान श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को प्रार्थना करें आपको आशीर्वाद दे, कृष्ण भक्ति में कृष्ण का चरण में आपका मन रहे, इसी प्रकार सब प्रकार उत्सव में योगदान देकर दूसरा को एनकरेज करे, उत्साहित करे और दूसरे लोग भगवान राधा गिरिधर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा की सेवा करने उत्साहित प्राप्त करे। हरे कृष्ण।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल 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 नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल गौर प्रेमानंदी हरि नाम संकीर्तन की श्री श्री राधा गिरिधारी जी की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की गौर प्रेमानंदी
हरे कृष्ण। आज हमारे मंदिर में बहुत सारे नए मेहमान आए, तो उन मेहमानों से निवेदन करेंगे कि आप कृपया करके हर रविवार को ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो आप केवल एक दिन नहीं, इसी रविवार को नहीं बल्कि हर रविवार को आने के लिए प्रयास कीजिएगा। और जितने भक्तगण हैं जो हर रविवार को आते हैं उनसे निवेदन करेंगे कि आप उन मेहमानों का स्वागत करें, उनसे कुछ बातचीत भी करें। हरे कृष्ण प्रसाद
महाप्रसाद गोविंद नाम ब्राह्मणी वैष्णव स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते शरीरा अविद्या जा जड़ेन्द्रियतः का जीव फल विषय सागरे तार मध्य जीवाति लोभ मय सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामय करी बार जिव जाय स्वप्रसाद अन्न दिलो भाय शय्यन्न अमृत पाओ श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम डाको चैतन्य निताय
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा गिरिधारी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया महाप्रसादम की जय।
हरे कृष्णा। महाप्रसाद लेने के लिए कृपया करके आप लाइन में खड़े हो जाएं। ये दो माताजी लोगों के लिए